नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना से देश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आई क्रांति। बहुचर्चित युग हत्याकांड मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने एक आरोपी को किया बरी, 2 को उम्र कैद। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित, आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने आयुष को बताया सामाजिक बदलाव का साधन। महिला विकास निगम ने शिक्षा ऋण को 75,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने को दी मंजूरी। और दूसरे शारदीय नवरात्र पर आज की गई मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना। अब समाचार विस्तार से। आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आयुष्मान भारत के कारण भारत स्वास्थ्य सेवा में क्रांति का गवाह बन रहा है और इसने वित्तीय सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने दिखाया है कि कैसे क्षमता, करुणा और तकनीक मानव सशक्तिकरण को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत एक ऐसी पहल है जिसने भविष्य की जरूरतों का अनुमान लगाया और लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता के साथ साथ किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना से पिछले 7 वर्षों में देश में 55 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। हमीरपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इस योजना से स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है और गरीब व वंचित परिवारों को जीवन सुरक्षा कवच मिला है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सौर ऊर्जा उत्पादन योजनाओं को अपनाकर सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल एक बड़े प्रदेश के रूप में उभर रहा है। हाल ही में प्रदेश ने प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बड़ी प्रगति हासिल की है। योजना के तहत लगभग 16 मेगावाट क्षमता के 4,367 संयंत्र घरों की छतों पर लगाए भी जा चुके हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा खपत में 100% हरित ऊर्जा इस्तेमाल हो, इसके लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कारगर सिद्ध हो रही है। प्रदेश में इस योजना के तहत अब तक लगभग 16 मेगावाट क्षमता के 4,367 संयंत्र लगाए जा चुके हैं और 33 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी जारी की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार ने उपभोग के बाद बची हुई बिजली को स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड को बेचने का भी प्रावधान किया है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 90,000 घरों में रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों का भविष्य संवारने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और कई नामी शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि शिमला के तारा हॉल स्कूल में 3, दयानंद पब्लिक स्कूल में 8 और सोलन के पाइन ग्रोव पब्लिक स्कूल में 4 अनाथ बच्चों का दाखिला करवाया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है और उनकी देखभाल, सुरक्षा और शिक्षा की जिम्मेदारी 27 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार वहन करेगी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला के बहुचर्चित युग हत्याकांड मामले में दोषियों को जिला व सत्र न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए आज उच्च न्यायालय की विशेष खंडपीठ ने एक आरोपी तजेंद्र पाल को बरी कर दिया है, जबकि 2 अन्य दोषियों चंद्र शर्मा व विक्रांत बख्शी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त महाधिवक्ता जितेंद्र शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी।
आज जो जजमेंट जो कोर्ट में आई है उसमें तजेंद्र पाल को जो है वो बरी कर दिया, दोनों के डेथ सेंटेंस जो है मॉडिफाई करके जो है उसमें जो है उनको जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, चंद्र और विक्रांत को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है। स्टेट हालांकि इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसकी अपील डेफिनेटली जो है सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में करेगी।
युग के पिता विनोद गुप्ता ने कहा कि उनके बेटे को न्याय नहीं मिला है और वे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।
मैं कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं चला कि आज फैसला सुना रही है कोर्ट। उसके बाद उनको किल टू डेथ की सजा सुनाई गई थी सेशन कोर्ट से, आज उन्होंने उम्र कैद की सजा दे दी है। 2014 से हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला, 11 साल हो गए। मैं आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा।
आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। इस मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित कर आयुर्वेद के महत्व पर प्रकाश डाला गया। शिमला में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आयुष सेवाओं को सिर्फ इलाज तक ही सीमित न रखकर इसे रोजगार, वेलनेस, टूरिज्म और आर्थिक विकास का माध्यम बनाने का प्रयास कर रही है। आयुष मंत्री ने कहा कि आज आयुष सामाजिक बदलाव का साधन बन गया है और इसके माध्यम से युवाओं व किसानों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
जी डॉक्टर साहब,
सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, महिला विकास निगम के निदेशक मंडल की आज शिमला में हुई बैठक में शिक्षा ऋण की सीमा को 75,000 रूपये से बढ़ाकर 3,00,000 रूपये करने को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि निगम द्वारा महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए 4% ब्याज दर और रोजगार के लिए 6% ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। इसके लिए महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 1,00,000 रूपये से कम होनी चाहिए। बैठक में स्वरोजगार ऋण सीमा को 1,00,000 से बढ़ाकर 3,00,000 रूपये करने को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर सरकार परिवर्तन व प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार रोजगार सृजन व उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है और युवाओं को भविष्य के रोजगार सृजक बनने के लिए सशक्त बना रही है।
रोजगार सृजन और रोजगार के अवसरों का विस्तार पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। भर्ती, उद्योग विकास और निर्यात पर केंद्रित प्रयासों ने विभिन्न क्षेत्रों में औपचारिक रोजगार सृजन में मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया रोजगार मेला देश भर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य युवाओं को सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना और राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका को बढ़ाना है। अब तक 16 राष्ट्रीय स्तर के रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 1,00,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत लगभग 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है, ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रूपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर, जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
दूसरी ओर स्टार्टअप इंडिया पहल ने देश में एक जीवंत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2016 में शुरू की गई इस पहल ने 1,60,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की है और 17,60,000 से ज्यादा रोजगार सृजित किए हैं। अप्रैल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाखों छोटे उद्यमियों को आसान ऋण प्रदान करती है। मुद्रा योजना के तहत अब तक लगभग 33,00,000 करोड़ रुपए के 52 करोड़ से ज्यादा ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शिमला नगर निगम क्षेत्र में भी स्वच्छता व पौधरोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में पार्षदों ने बताया कि ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगे।
कृष्णा शर्मा, वार्ड नंबर 27 कसुमटी से पार्षद हूँ। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का जो एक कार्यक्रम चला है वो हमारे मेरे वार्ड में भी जो है वो हम उस कार्यक्रम को चला रहे हैं, और यह जो कार्यक्रम है वो 2 अक्टूबर तक चलेगा। गली है, मोहल्ले है, और जो पार्क है उनकी जो अभी तक जो है सफाइयां कर चुके हैं, साथ ही जगह जगह पर हमने जो है पेड़ भी लगाए हैं जिससे कि जो है हमारा पर्यावरण संरक्षित रहे।
मेरा नाम कमलेश मेहता है, मैं पार्षद हूँ अपर ढली से। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चला है, इसमें कार्यक्रम के तहत हम भी अपने वार्ड में तरह तरह के सफाई अभियान करते हैं, जिसमें कि नालियों की सफाई करना है, जो गंदगी फैली है, जो कूड़ा फैला उनको उठाना है, ये सारे अभियान हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कर चुके हैं। इसी कार्यक्रम के तहत पेड़ लगाना भी है जिससे कि हम एक स्वच्छ वातावरण पैदा कर सके।
प्रदेश में इन दिनों शारदीय नवरात्रों की धूम है। राज्य के सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में आज नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और मां के भजन कीर्तनों से सारा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। इस दौरान मंदिरों में भंडारे लगाए जा रहे हैं और अनेक स्थानों पर रात के समय रामलीला का मंचन भी किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना से देश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आई क्रांति। बहुचर्चित युग हत्याकांड मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने 1 आरोपी को किया बरी, 2 को उम्र कैद। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित, आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने आयुष को बताया सामाजिक बदलाव का साधन। महिला विकास निगम ने शिक्षा ऋण को 75,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने को दी मंजूरी। और दूसरे शारदीय नवरात्र पर आज की गई मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।